25 फरवरी दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। असम के गोलाघाट में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 150 के पार पहुंची।
4-5 दिन जैसे मरा हुआ, तो लगभग 3-4 दिन काम करता था, 3-4 दिन में 200-300 ऐसे हम फालतू में खर्च कर देता था।
आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ऑस्कर जीतने वाली गुनीत मुंगा से।
वो 12-14 साल की बच्चियाँ ओकवुड स्कूल में फिल्म बनाना चाहती थी, वो एक्चुअली फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने पैसे रेज किए फिल्म के लिए, तो उनका सोच देख कर ही मैं तो फैन हो गई थी उनकी।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। पूर्वोत्तर राज्य असम में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद कम से कम 150 हो गई है। अभी भी 300 से करीब लोग अस्पताल में भर्ती हैं और ये संख्या बढ़ने की आशंका है। चाय बागान में काम करने वाले लोगों ने गुरुवार को ये शराब पी थी। इसी महीने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोग मारे गए थे। ग्रामीण भारत में महामारी से जुड़ी मान्यताओं को लेकर बनी एक लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस नाम की ये फिल्म दिल्ली के पास के एक गांव की ऐसी महिलाओं की कहानी बताती है जो पैड बनाती हैं और बेचती हैं। इस फिल्म का निर्देशन ईरानी मूल की अमरीकी फिल्मकार रायका जहतापशी ने किया है। वहीं इस साल का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर ग्रीन बुक फिल्म को मिला है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार फिल्म बोहेमियन रैप्सडी को मिले। इस फिल्म के लिए रामी सईद मलिक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसके अलावा फिल्म ने 3 और पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म द फेवरेट के लिए ओलिविया कोलमैन को मिला। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीनी उत्पादों पर निर्धारित कर वृद्धि को रोकने जा रहे हैं, क्योंकि चीन के साथ हुई वार्ता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चीन और अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ बौद्धिक संपदा और तकनीक हस्तांतरण जैसे मूल मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी है। वहीं चीन की सरकारी समाचार सेवा शिन्हुआ ने भी वार्ता को उत्पादक बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीकी प्रांतीय गवर्नरों से कहा है कि अगले सप्ताह और बड़ी खबर मिल सकती है। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता की संभावनाएं भी जाहिर की। चीनी उत्पादों पर शुक्रवार को कर की दर 10 से बढ़ाकर 25% होनी थी। व्हाइट हाउस में गवर्नरों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ये सब बहुत शानदार रहा। मैं आपको बताऊं कि ये रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है। हमने 35 सालों में पहली बार अपने आप को मजबूत स्थिति में रखा है। हम ऐसे समझौते करना चाहते हैं जो दोनों देशों के बीच फायदेमंद हो, और हम बिल्कुल ऐसा ही करने जा रहे हैं। अफगान शांति वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत जालेम खलीलजादा का कहना है कि उन्होंने तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कतर में मुलाकात की है। खलीलजाद ने बताया कि उन्होंने वार्ता के दौरान मुल्ला बरादर के साथ भोजन भी किया। अफगान तालिबान और अमरीका के बीच कतर में शांति वार्ता चल रही है, जिसमें दोनों पक्षों में अफगानिस्तान से अमरीकी सैन्य बलों को वापस बुलाने पर सहमति बन सकती है। कई लातिन अमरीकी देशों के प्रतिनिधि कोलंबिया में बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ क्या कदम उठाए जाए, इस पर चर्चा होगी। लातिन अमरीकी देश वेनेजुएला में अमरीकी राहत सामग्री को देश में न आने देने से नाराज हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुके ने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ कूटनीतिक प्रयास तेज होने चाहिए। उन्होंने कहा,
मुझे लगता है कि हमने जो देखा उस पर हमें स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए। मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो कूटनीतिक रस्सी कसे, क्योंकि तानाशाह ने बेबस लोगों के लिए लाई जा रही खाद्य सामग्री और दवाइयों को आग लगा दी है। ये थे कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुके के शब्द। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। असम में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 150 के पार हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर चाय बागान के मजदूर हैं। यह हादसा असम के गोलाघाट जिले में हुआ है। हादसे के बाद से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब भी अस्पताल में 100 से अधिक लोग भर्ती हैं। इस मामले में करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने गोलाघाट गए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से बात कर ताजा विवरण मांगा।
ताज़ा हालात ये है कि पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है, क्योंकि इस तरह की घटना इतने बड़े व्यापक स्तर पर पहले कभी नहीं हुई। और एकाएक पिछले 3 से 4 दिनों के दरमियान लोगों के मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जहरीली शराब का सेवन किया है उन लोगों ने। और ये गोलाघाट का इलाका है, उत्तरी असम का, जोरहट के पास का, और ये टी गार्डन यानी चाय के बागानों का इलाका है। और ज्यादातर जो लोग हैं, 99% जो लोग हैं, वो या तो चाय के बागान में काम करते हैं या पास के खेतों में काम करते हैं। बहुत गरीब मजदूर हैं जो ज्यादा हताहत हुए हैं, जिनकी जाने गई हैं। हमारी उनके परिवारों से बात हो रही है। कोई 130 रुपए पर डे की सैलरी पर काम करता था, किसी को 150 रुपए रोजाना मेहनताना मिलता था। तो हालात बहुत बदतर है। अस्पतालों में जगह एक तरह से कम पड़ रही है, गोलाघाट में भी कम पड़ रही है। तो यहाँ से घायलों को आसपास जोरहट वगैरह और तमाम सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। और जिन लोगों से हमने बात की, उनकी दास्तान काफी दर्दनाक है। उन्होंने बताया वो मंजर कि जब उन्होंने शराब पी तो उस समय क्या हुआ। उसमें महिला भी है, पुरुष भी है। सुनते हैं क्या कहा कुछ लोगों ने।
4-5 दिन जैसे मरा हुआ, तो लगभग 3-4 दिन काम करता था। 3-4 दिन में 200-300 ऐसे हम फालतू में खर्च कर देता।
ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ नितिन, किस तरह से ये जहरीली शराब पी लोगों ने?
रेहान साहब, बृहस्पतिवार की बात है और ये ज्यादातर मजदूर लोग हैं जो बागानों में काम करते हैं। उन सबका ये कहना है, ज्यादातर लोगों का जिनसे हमारी बात हुई है, कि वो लोग 8 से 10 घंटे की मजदूरी कर घर आए और उन्होंने ये शराब पी। किसी ने 1 गिलास, किसी ने 2 गिलास। ये बहुत सस्ती शराब है, सबसे सस्ती शराब, जिसको स्थानीय भाषा में सुलाई कहते हैं। और उन्होंने पी, करीब 50 रुपए में 1 लीटर शराब ये मिल जाती है यहाँ पर। इसी की वजह से ये काफी पॉपुलर है गरीब लोगों में, मजदूरों में, और ये जहरीली निकली और उसी के बाद से ये हादसा हुआ है।
कुछ गिरफ्तारी हुई है, संबंध में कुछ लोगों को पकड़ा गया है?
जी, करीब 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक। और असम सरकार ने कई लोगों का निलंबन भी किया है, कई अफसरों का भी निलंबन किया है। व्यापक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। खुद जो यहाँ के एक्साइज मिनिस्टर हैं, वो इलाके का दौरा कर चुके हैं। सरकारी जो बड़े आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका आना जाना जारी है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि जहां से इन लोगों ने ये खरीदी थी जहरीली शराब, जो मुख्य स्रोत थे, वो 2 लोग, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी भी उसी शराब को पीने से उसके अगले दिन तक मौत हो गई।
ये थे गोलाघाट असम से नितिन श्रीवास्तव। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के मुद्दे पर रविवार को हिंसा भड़कने के बाद राजधानी ईटानगर और नाहरलागुन में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पुलिस फायरिंग में 6 लोग भी मारे गए हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। सुनिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
अरुणाचल प्रदेश में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के मुद्दे पर भड़की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अब आगे इस मुद्दे को नहीं उठाने की बात कही है। दरअसल प्रदेश में सालों से बसे 6 गैर अरुणाचली आदिवासी समुदाय को पीआरसी देने से जुड़े एक प्रस्ताव को विधानसभा में लाने की योजना थी, जबकि इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों की राय बटी हुई थी। इस बीच प्रदेश के कुछ छात्र संगठनों का विरोध भी चल रहा था, लेकिन बीते शुक्रवार की रात जब कुछ प्रदर्शनकारी कथित तौर पर सचिवालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए गोली चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रदेश के लोग बेहद नाराज हो गए और रविवार को सैकड़ों लोग विरोध करने सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शहर में काफी तोड़फोड़ की और एक पुलिस थाने को आग लगा दी। गुस्साए लोगों की भीड़ ने उप मुख्यमंत्री चोनामेन के निजी घर पर भी तोड़फोड़ की। इसके बाद हिंसा और भड़क गई। अरुणाचल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष डोमिनिक तादार ने बीबीसी से कहा,
टीआरसी इश्यू को लेकर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो नन नचलिस्ट को देने का जो बात किया ना, लैंड ओनर्स है लेकिन टीआरसी में है ना, जो नन अरुणाचलिस्ट है, नॉर्थ अरुणाचल का जो जनजाति नहीं है, जो जिसका जनजाति असम में ज्यादा है लेकिन बहुत सालों से अरुणाचल में रहने वाले लोग, लेकिन वो अपोज करने के बाद टीआरसी पब्लिक अपोज करने के बाद और एमएलए लोग भी कुछ लोग मतलब वो सो माना नहीं ना ये बात को, तो इसलिए अपोज कर दिया उसको असेंबली में प्लेस नहीं करने से पहले प्रोटेस्ट होने के बाद हमारा सीएम साहब तो ड्रॉप कर दिया था उसको।
इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने मई 2018 में एक संयुक्त उच्चाधिकार समिति का गठन किया था। समिति की जिम्मेदारी ये तय करना था कि उन गैर अरुणाचली जनजातियों के लिए क्या रास्ता निकाला जाए। समिति ने सिफारिश की थी कि गैर अरुणाचली 6 समुदायों को भी राज्य में पीआरसी दी जाए, लेकिन पूर्व छात्र नेता रितेमसो मान्यू गैर अरुणाचली लोगों को पीआरसी देने के निर्णय को यहाँ की मूल जनजातियों के खिलाफ मानते हैं।
ये यहाँ का जो अरुणाचल का जो टीआरसी परमानेंट रेसिडेंस है तो वो जो है नॉन लोकल जो बाहर वाला को नहीं देना है बोल, और हम लोग का ट्राइबल स्टेट है तो टीआरसी देने के बाद तो एसटी भी तो मांगेगा, तो ट्राइबल स्टेटस लेगा, तो ये सब मैंने लेके अभी स्टेट में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है क्या है, फिर हम लोग का इतना है, तब गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रहे, इसलिए लीग जो है मैंने प्रवोक हो गया मैंने ना।
अरुणाचल प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री खांडू और उनकी पूरी टीम कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। मुख्यमंत्री खांडू ने हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था। जानकार अरुणाचली लोगों की नाराजगी को खांडू के इस बिल के समर्थन से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि नागरिकता बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों में जोरदार विरोध हुआ था। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी असम।
और अब रुख मध्य प्रदेश का, जहां पर चित्रकूट के दो मासूम जुड़वा भाइयों के अपहरण और उसके बाद हुई हत्या ने राजनीतिक रंग ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक आरोपी के भाई को बजरंग दल का नेता बताया जा रहा है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है और लोगों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। पेश है सूर्य न्यासी की रिपोर्ट।
प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट से 12 दिन पहले स्कूल बस से अपहरित किए गए 6 वर्षीय जुड़वा भाइयों की लाश रविवार को बरामद की गई। शव मिलने के बाद से ही क्षेत्र में तनाव है और लोग सड़कों पर आ गए हैं। बच्चों के शव उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिले। सोमवार को विरोध स्वरूप दुकानों को बंद रखा गया और मौन जुलूस निकाला गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस जुलूस में शामिल हुए और सरकार को बच्चों को नहीं बचा पाने के लिए आड़े हाथों लिया।
मुझे आश्चर्य होता है गृह मंत्री ऐसे बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, झंडा लगा था, हाथ है तो हाथ को पकड़ने से रोका किसने? 13 दिन कर क्या रहे थे? क्या अपराधियों की कोई जाति धर्म पर पार्टी होती है? ये अपनी जिम्मेदारी से बचना है, ये अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना है और ये इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़े, इसके लिए सारे सबूत जुटा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
पुलिस ने इस मामले में अभी तक इंजीनियरिंग के 2 छात्रों के सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 2 इंजीनियरिंग छात्रों में से एक को बजरंग दल के क्षेत्रीय नेता का भाई बताया जा रहा है। इसके चलते मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण करने वाले लोगों का संबंध विपक्षी पार्टी से प्रतीत हो रहा है। वहीं बजरंग दल के प्रांत सहमंत्री सागर गुप्ता ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
विष्णुकांत शुक्ला हमारे बजरंग दल में कभी कोई पद पे नहीं रहे, कभी जुड़े नहीं थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक जन संगठन है और जन संगठन के नाते जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो आम हिंदू समाज का कार्यकर्ता व्यक्ति उसमें शामिल होता है। कभी वो हो सकता कभी आया हो, पर हमारा वो पदाधिकारी कभी नहीं था। पर जिस तरह से पुलिस के आला अफसर आईजी साहब ने जिस तरह से ये ब्लेम किया है, बजरंग दल को बदनाम करने का प्रयास किया है, उन्होंने तो प्रदेश तक की कांग्रेस सरकार के इशारे पर इसका हमारे संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया है।
इन बच्चों को बचा पाने में असफल सरकार के खिलाफ भी भारी गुस्सा देखा जा रहा है। सरकार के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा,
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी वो बच्चों का अपहरण किया था उनको तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसको हम ये सुरक्षित बच्चों को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, इसका दुख और खेद हमको भी है और वो जो भी इसमें शामिल थे उनको तो सबको हम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
विपक्षी भाजपा ने सोमवार को इस घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए और आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में असफल साबित हो रही है। इस पूरी घटना में पुलिस की नाकामी सामने आई। 12 दिन पहले इनका अपहरण होने के बावजूद पुलिस आरोपियों को ढूंढ नहीं पाई। घर वालों ने 20 लाख फिरौती के तौर पर दिए, लेकिन उसके बावजूद दोनों बच्चों की हत्या महज इसलिए कर दी गई कि वो आरोपियों को छूटने के बाद पहचान लेंगे। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं पर आधारित फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने 91वीं एकेडमी पुरस्कार समारोह में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार हासिल किया है। 26 मिनट की फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस उत्तरी भारत के हापुड़ की लड़कियों और महिलाओं और उनके गांव में पैड मशीन की स्थापना के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे साथी इंदु पांडे ने फिल्म की निर्देशक गुनीत मुंगा से बात की और पूछा कि इस फिल्म को बनाने का आइडिया आपको कहाँ से मिला।
एक्चुअली 12 से 14 साल की लड़कियां हैं एलए में एक ओकवुड स्कूल में, उन्होंने कहानी पढ़ी थी कि इंडिया में गांव-गांव में लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की वजह से बच्चों का स्कूल ड्रॉप हो जाता है लड़कियों का। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे छोटे छोटे फंड रेज किए बाय बेक सेल कर करके और चीजें बना बना के बेच बेच के उन्होंने पैसे रेज किए एक मशीन देने के लिए। पहले तो उन्होंने $2,500-3,000 इकट्ठे करके वो मशीन दी और फिर उन्होंने बोला कि एक मशीन से हम कितना कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर पिक्चर बनाते हैं। तो ये आइडिया उन लड़कियों को आया अमेरिका में। फिर उन्होंने बोला अभी हम पिक्चर कैसे बनाए। तो उन्होंने किकस्टार्टर पर पैसे रेज किए क्राउड फंड। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ $40,000 रेज किए। फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उनके एक पेरेंट ने मुझे कॉन्टैक्ट किया इंडिया में और बोला कि हमारी बेटियों को फिल्म बनानी है तो आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो स्कूल में। तो फिर मैं उन सब लड़कियों से मिली अपने एलए ट्रिप पर और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सोच देखकर और फिर मैं ऑन बोर्ड आ गई उनको हेल्प करने कि ये इंडिया में फिल्म बनेगी कैसे। उस हिसाब से मैं इस फिल्म से अटैच हुई।
तो ये आपका रोल था। तो ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है जो नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए, तो इसमें अगर आपके रोल की बात की जाए तो यहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक की जो जर्नी थी वो कैसी रही।
बहुत अच्छी, इन सब लोगों के साथ, उन सब बच्चों के साथ और यहाँ पर हापुड़ के बच्चों के साथ। हमने एक्शन इंडिया एनजीओ के साथ टाइप किया जिनका विलेज था हापुड़ जहाँ पर हमने ये फिल्म शूट की और एक पूरा टाइम कवर किया मशीन लगाने से पहले और मशीन लगाने के बाद कैसे लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं, कैसे लोग स्कूल जाने लग गए हैं। एक मशीन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है। तो वो इम्पैक्ट और वो एसेंस इस पिक्चर में हमने कैप्चर किया।
सो अगर इसके लिए कहा जाए कि व्हाट मेक्स दिस डॉक्यूमेंट्री स्पेशल तो क्या कहेंगे आप।
बहुत ही ज्यादा हार्ट है और बहुत ही ज्यादा स्पिरिट है, यू नो, और हर टैबू से ब्रेक फ्री करने की एक लगन है कि ये सब सोसाइटी हमारे ऊपर कहती है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकती। मतलब दिस इज गर्ल्स इन द सेंटर एंड जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको वो पुलिस ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग कर रही है। तो इट्स अ फिल्म विद बिग हार्ट।
और ये जो प्रोजेक्ट चूज करने के पीछे कोई और भी रीजन था या जब देखा तब आपको लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए इसके लिए।
जब वो 12-14 साल की बच्चियां ओकवुड स्कूल में ये फिल्म बनाना चाहती थी, वो एक्चुअली फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने पैसे रेज किए फिल्म के लिए, तो उनका सोच देखकर ही मैं तो फैन हो गई थी उनकी।
इससे पहले भी आपकी फिल्म ऑस्कर में जा चुकी है।
जी, कवि, एक शॉर्ट फिल्म कवि वाज अबाउट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड ब्रिकलिन वर्कर, जो ईट भट्टियों में जो बच्चे काम करते हैं उसके बारे में थी और वो प्रैक्टिस स्टॉप करने के लिए और उसके अगेंस्ट। वो भी एक इंटरनेशनल यूएसए बच्चे की फिल्म थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की फाइनल फिल्म वो इंडिया में बनाने आया था और मैं उससे मिली थी और मैंने कहा कि तेरी कहानी अच्छी है चलो बनाते, और फिर वो स्टूडेंट ऑस्कर जीती और फिर वो फाइनल फाइव में थी और हम वहाँ गए थे और बहुत ही खूबसूरत समय था टू अटेंड दी एकेडमी अवार्ड। मतलब पहले तो वहाँ जाने ही वाले बहुत बड़ी बात थी, 2010 में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ऐसी इच्छा थी जाने की। और जो मेरा मेन एक्टर था उसमें वो स्लम्स का बच्चा था सागर सालों के, तो सागर और मुझे और हमारे जो फर्स्ट एडी था जिन्होंने एक्चुअली सारा काम किया था उन सबको लेके जाने के लिए मैंने तो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दी थी और फिर वहां से हमारी स्पॉन्सरशिप आई थी और हमें फ्लाइट टिकट और होटल स्टे ऐसे मिला था और हम लोग फिर एक हफ्ते के लिए गए थे अकेडमी अवार्ड अटेंड करते। तो हमारे लिए वही बड़ी बात थी कि एलए जाना और अटेंड करना। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आजकल एलए जाना ज्यादा आसान है 2010 मेरे लिए।
और अभी आजकल औरतों की जो पोजीशन है सिनेमा में बड़े पर्दे पे और पर्दे के पीछे भी काफी अच्छा लग रहा है जब सब हम लोग सुनते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप।
एब्सोल्युटली, आई थिंक हमेशा से होनी चाहिए और बहुत कुछ करना है, तो अभी तो शुरुआत है।
तो क्या चैलेंजेस आते हैं जब कोई पर्दे के पीछे रह के काम करता है।
जज होते हैं कि मतलब शायद वो गुड इनफ नहीं है, अरे एक्शन फिल्म तो नहीं कर पाएंगे, अरे ये तो मतलब ये सब प्री कंसीव नोशन ही है। मतलब पिक्चर तो पिक्चर ही है ना, ये नहीं, ये लड़कियां नहीं कर पाएंगी, पाएंगे, ये वो नहीं बता पाएंगे। जैसे मतलब इतने सारे शेफ मैन है, उनके बारे में तो नहीं बोला जाता कि अरे ये खाना नहीं बना पाएंगे। इसलिए लड़कियों के लिए क्यों बोला जाता है कि वो शायद ये वाली कहानी नहीं बोल पाएंगे।
और 2013 में आपके दो प्रोजेक्ट थे जिसको क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया था, द लंच बॉक्स और मॉनसून शूट आउट।
जी,
उसके लिए क्या कहना आपका?
मतलब मेरी तो दुनिया बदल गई थी लंच बॉक्स के बाद, तो मेरे लिए काफी दरवाजे खुल गए थे दुनिया भर में एज अ प्रोड्यूसर लंच बॉक्स के बाद। एंड मॉनसून शूट आउट भी कैन में थी, एंड दोनों फिल्मों ने मैंने को प्रोडक्शन सीखा और बहुत काम किया इंटरनेशनली। आई थिंक दिस आर अमेजिंग टू हैपन इन एनी प्रोड्यूसर्स लाइफ, एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दोस फिल्म्स एंड आई वर्क्ड विद अमित कुमार एंड रितेश बत्रा, एंड द स्टोरीज चोज मी एज अ प्रोड्यूसर।
पर गुनीत, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि आप जो फिल्में बनाती हैं, मतलब ये तो नहीं है कि उससे दुनिया बदल जाएगी, लेकिन हाँ, जो भी देखता है या पढ़ता है तो लगता है कि अरे कुछ सोच जरूर बदलनी शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप जब फिल्म बनाते हो, कॉन्सेप्ट लेते हो, तो क्या ये थॉट रहता है दिमाग में?
मतलब आप सही कह रहे हो, दुनिया तो नहीं बदल सकते, बट कुछ मतलब ऐसे मतलब हर पिक्चर से इतिहास रचने का आइडिया नहीं होता है, बट आइडिया ये जरूर होता है कि लोग देखें और सोचें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वो हमें 2 घंटे दे रहे हैं हम उसका महत्व उतना ही जरूरी रखें, हम किसी का टाइम वेस्ट ना करें। तो कोई मुझे अपने 2 घंटे दे रहा है हमारी कहानी बोलने के लिए, हम लोग सब बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा सब पर किसी ना किसी चीज पर ओपिनियन है, बट जब वो हमारी कहानी सुनते हैं 1 वे 2 आवर्स, those 2 hours of commitment is very special and I just want to make sure कि मैं वो 2 घंटे किसी के भी granted ना लूँ।
और कुछ कहना चाहते हो आप गुनीत?
बस I hope सब pray करें कि हम जीते, ये पिक्चर ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट हो।
इंदु पांडे बात कर रही थी ऑस्कर जीतने वाली गुनीत मोंगा से। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं,
और मैं हूँ ज्योतिका। नमस्कार।
तो ज्योतिका के पास आज ईमेल हैं, हमारे पास डाक से चिट्ठियां बहुत कम आई हैं। ऐसा लगता है कि जो पोस्ट कार्ड लिखते हैं या अंतर्देशीय लिफाफे से हमें चिट्ठियां भेजते हैं, उन श्रोताओं ने थोड़ी सी कंजूसी भर दी है। तो हम इंतजार करेंगे आपकी चिट्ठियों का, लेकिन ईमेल जो हमारे पास आज आए हैं, कहाँ से शुरुआत कर रही हैं ज्योतिका?
सबसे पहला ईमेल मैं लेना चाहूंगी आसिफ करीम का, श्रीलंका से लिखते हैं।
श्रीलंका से?
जी,
क्या बात है, वाह।
ये लिखते हैं, इस बार लालू प्रसाद यादव जी पर की गई विवेचना मेरे लिए 2 कारणों से खास रही। एक तो मैं स्वयं बिहार से हूँ, दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों का आलोचक रहा हूँ, परंतु गत दिनों जिस तरह इन छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने सांप्रदायिकता के विरुद्ध एकजुट हुई हैं, अब इनसे आशा की किरणें फूटी हैं।
अच्छा, तो आसिफ करीम साहब बिहार के रहने वाले हैं लेकिन फिलहाल श्रीलंका में रहते हैं और हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चूंकि विदेश में रहते हैं, दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण देश में रहते हैं, तो वहाँ से आप लगातार हमें चिट्ठियाँ भेजते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
साथ ही साथ एक और विवेचना पर तारीफ आई है, मदन लाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से लिखते हैं, विवेचना में रेहान फजल द्वारा लालू यादव जी की रोचक जानकारी मिली। वसतुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी की तार्किक प्रस्तुति बहुत शानदार। मुझे आपसे निवेदन है कि आप एक दिन सर छोटू राम पर विवेचना प्रस्तुत करेंगे। बीबीसी हिंदी वेबसाइट पर रोज ऐतिहासिक 1 घंटा प्रकाशित करें।
ऐतिहासिक 1 घंटा प्रकाशित करें, ये पता नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें हम या विश्लेषण हम जरूर छापते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है सर छोटू राम पर विवेचना का, तो ये आपकी बात रेहान फजल तक पहुंचा दी जाएगी, और अगर संभव हुआ तो सर छोटू राम के जीवन पर फजल साहब कुछ प्रकाश डालेंगे। अब आगे बहुत सारी ईमेल मैं देख रहा हूं आपके पास हैं, कम से कम नाम तो आप पढ़ ही दीजिए जो लालू प्रसाद यादव पर जो विवेचना की है रेहान साहब ने, उनके बारे में जो राय जाहिर की है, नाम कम से कम पढ़ दें।
तो पहला नाम है पप्पू यादव लातेहार झारखंड से, मोहम्मद वसीम कटिहार बिहार से, जंग बहादुर सिंह जमशेदपुर से, इन सभी की तारीफें हैं विवेचना पर।
अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि एक और चिट्ठी है जो ऋषिकेश कुमार मेहरा ने लिखी है, वो क्या कहते हैं?
हाँ, और ये लिखते हैं कि मैं बीबीसी 1994 से सुन रहा हूँ और मैं पहली बार लिख रहा हूँ, लालू यादव की विवेचना रेहान फजल के द्वारा सुनाया गया, बहुत अच्छा लगा।
तो आप जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जिनकी चिट्ठी आज हम शामिल कर पाए हैं या शामिल नहीं भी कर पाए हैं, उनका नाम भी हम नहीं ले पाए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको रेहान फजल की विवेचना का ये अंक बहुत पसंद आया। यही कोशिश रहती है रेहान साहब की कि आप जिन राजनेताओं को या जिन महत्वपूर्ण शख्सियत को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके बारे में आपने सुना है, उनके जीवन के ऐसे पहलू को आपके सामने उजागर करते हैं रेहान साहब जो कम जानते हैं लोग, जिनके बारे में बहुत आम फहम जानकारी होती नहीं है। बहुत धन्यवाद, लिखते रहिएगा।
अगला ईमेल आपके नाम है।
मेरे नाम
सादिक आजमी लिखते हैं सऊदी अरब से, लंबे अंतराल के बाद आखिरकार अपने चहेते उद्घोषक राजेश जोशी जी की वापसी से मन गदगद है।
अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो ये चिट्ठी लिख के ये शब्दों का इस्तेमाल करके हमारा मन गदगद कर दिया है। हमारा मन भी गदगद है।
उनकी अनुपस्थिति की मैं आलोचना नहीं करूंगा ना ही शिकायत।
नहीं, आप आलोचना भी कर सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपका हक है। बस मैं अपनी सफाई सिर्फ ये दे सकता हूँ कि मुझे कहा गया कि मैं नेपाल जाके कुछ महीने काम करूं, तो मैं काठमांडू में था, वहां नेपाली सेवा के साथियों के साथ मैं काम कर रहा था, लेकिन दिल से तो मैं आपसे जुड़ा ही हूं।
अभी तक तो बहुत तारीफें हो गई, पर अब आलोचनाओं का वक्त है।
जी बिल्कुल, जहां तारीफ होती है तो वहां आलोचना भी। जी मैं तैयार हूं।
भारविंदर बी का लिखते हैं, बीबीसी शायद आजकल पहले वाली नहीं रही, ना चाहते हुए भी मुझे ये लिखना पड़ रहा है कि आप शायद कभी कभी किसी बात का एक ही पहलू बताते हैं जो तर्क संगत नहीं एवं बीबीसी जैसे विश्वसनीय वेबसाइट के लिए अच्छी बात नहीं।
अच्छा, ये वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इनके तर्क में दम हो, लेकिन उदाहरण के साथ अगर आप देते कि इस खास खबर में, इस विश्लेषण में अगर कुछ कमजोरी रही है तो फिर हम शायद उसका कुछ निदान भी सुझा पाते, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़माना बदल गया है, वक्त बदल गया है। बीबीसी लेकिन वही है, बीबीसी बदली नहीं है। आप रेडियो प्रोग्राम सुनिए और अपनी राय से हमें अवगत कराते रहिए। मैं चाहता तो और हूँ कि चिट्ठियाँ पढ़ी जाएं, लेकिन समय नहीं है, इसलिए चलते चलते पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो पता लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और सभा के अंत में नजर दौड़ाते हैं आज की खेल गतिविधियों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी क्रिकेट से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को हराने के साथ ही आईसीसी चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम रखा है। उसने इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में भी हराया था। इस तरह मेजबान टीम ने इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। भारतीय टीम को इस जीत से 2 अंक मिले हैं। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 32 रन से हराया था। दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे गुरुवार 28 फरवरी को खेला जाएगा और वहीं कल 24 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया ने अपने भारत दौरे की शुरुआत जीत के साथ की। रविवार यानी कल खेले गए पहले T20 में KL राहुल ने 36 गेंदों में अर्धशतक लगाया, लेकिन टीम इंडिया 20 ओवर में 7 विकेट खोकर केवल 126 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने अर्धशतक लगाया और अपनी टीम को जीत दिला दी। जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर में 2 विकेट लेकर भारत के लिए जीत की उम्मीद जगाई थी, लेकिन उमेश यादव के पारी के आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 14 रन बटोर कर भारत के हाथों से पहले T20 मुकाबले में जीत छीन कर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। और अब बात बॉक्सिंग की। कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट मनीष कौशिक, जो 60 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, उनके समेत 3 भारतीय बॉक्सरों ने ईरान के छबाहार में चल रहे माकरान कप में अपने पदक तय कर लिए हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन दुर्योधन सिंह नेगी, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, और रोहित टोकस, जो 64 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, ये दोनों शामिल हैं। इन तीनों ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। खेल समाचारों में आज इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पूर्वोत्तर राज्य असम में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद कम से कम 150 हो गई है। अभी भी 300 के करीब लोग अस्पताल में भर्ती हैं और ये संख्या बढ़ने की आशंका है।
ग्रामीण भारत में महामारी से जुड़ी मान्यताओं को लेकर बनी एक लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस नाम की यह फिल्म दिल्ली के पास के एक गांव की ऐसी महिलाओं की कहानी है जो पैड बनाती हैं और बेचती हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीनी उत्पादों पर निर्धारित कर वृद्धि को रोकने जा रहे हैं क्योंकि चीन के साथ हुई वार्ता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अफगान शांति वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत जालेम खलीलजाद का कहना है कि उन्होंने तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से कतर में मुलाकात की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।